ओम शांति।
हम सबके बीच आज हम सबके स्नेही परम आदरणीय नलिनी दीदी उपस्थित है, जो 55 वर्षों से इस राजयोग का अभ्यास करते हुए बहुत ही सुंदर रूप से आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हुए सफलता को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की है। उन्होंने 13-14 वर्षों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये जो लाभ लिया है, 16 साल में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो ये परम सौभाग्य उनका रहा जो साकार बाबा मम्मा के अंग संग पालना लेने का सौभाग्य वो आज आप उनके मुखारविंद से सुनेंगे कि कैसे स्वयं बाप दादा ने उनको कितनी सुंदर प्रेरणाएं दी, उनका जीवन बनाया और जीवन को इतना श्रृंगार किया ज्ञान रत्नों से। और आप देखते हैं कि बहुत सुंदर राज्यों की शिक्षाएं, ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए समय प्रति समय उन्होंने बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी और साथ ही 4 पुस्तक उन्होंने लिखे हैं जो खास करके टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाते हैं और अनेक टीवी चैनल्स पर भी उन्होंने बहुत सुंदर प्रेरणाएं और इंस्पिरेशंस, मोटिवेशंस दी हैं। और साथ में आप देखेंगे कि ये रोज की मुरली, एसेंस ऑफ द मुरली, रोज रिकॉर्डिंग होती है और ब्लिप टीवी के दौरान सारे विश्व में प्रसारित होता है। तो आज हम सबका परम सौभाग्य है जो उनके मुखारविंद से साकार मम्मा बाबा के संग के अनुभव उनके मुखारविंद से हम सुनेंगे। आज के क्लास का टॉपिक भी है दृढ़ता द्वारा सफलता। तो आप देखेंगे कैसे उन्होंने अपने जीवन में दृढ़ता को धारण करते हुए सफलता को प्राप्त की है, वो स्वयं ही उनके मुखारविंद से आप सुनेंगे। अभी मैं आदरणीय दीदी से अनुरोध करती हूँ वो आप सबके समक्ष अपना अनुभव रखे। आदरणीय नलिनी दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे प्राणेश्वर, प्राण प्यारे बाप दादा, जो कि मेरा बाबा है, आपका भी बाबा है और सारे ही विश्व का बाबा है, तो मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट करके अपना बनाया और अपना बनाकर जो भी हमारे ईश्वरीय हक थे, जो भी हमारे ईश्वरीय अधिकार थे, जिसको हम बच्चे बाबा का वर्षा कहते हैं, जिस पर सिर्फ और सिर्फ हम ब्राह्मणों का ही हक है, हम ब्राह्मण ही जिसके ऊपर अपना अधिकार रखते हैं, परंतु उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, उस वर्षे को पाने के लिए हमें योग्य पात्र बनना पड़ता है, योग्य बालक बनना पड़ता है, जब हम योग्यता धारण करते हैं तो हम उस प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को जन्म के साथ ही पढ़ाई पढ़ानी शुरू की और पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों के अंदर जो हमारी सतयुगी स्वर्णिम दुनिया की जो रॉयल्टी है, जो हमारे देवताई ऊंच कुल के सतयुगी संस्कार हैं, वो हम बच्चों में बाबा ने भरने शुरू किए। तो परम पिता बन करके पहले हमें अपने गोद का बच्चा बनाया और गोद का बच्चा बनाने के साथ साथ हमें अपना स्टूडेंट बनाया, परम शिक्षक बन करके, और हमारी पढ़ाई शुरू हुई। अब जब पढ़ाई की बात आती है तो ये बात हमें बाबा ने सिखाई, जैसे प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमारे अंदर योग्यताएं गुण भरने शुरू किए, वैसे परम शिक्षक के ऊंचते ऊंच बाप जो सुप्रीम टीचर है, उसके हम ऊंचे ते ऊंचे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे अंदर स्कूल की मैनर्स, टीचर के साथ हमारे बिहेवियर की मैनर्स, क्लास में बैठने की मैनर्स, हमारी पढ़ाई की पढ़ने की मैनर्स और हमारे ऊंच पद को प्राप्त करने के गुह्य राज, गोपनीय राज, अर्थात हमारी पढ़ाई की रिजल्ट किस विद्यार्थी को क्या मिलेगा, ये सब बातें मीठे मीठे परम शिक्षक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाना शुरू किया। मुझे याद आता है कि सर्वप्रथम हम अपने सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर के सामने जब सन्मुख में बैठते हैं तो हमें कैसे बैठना है और कैसे पढ़ाई पढ़नी है, वो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया और उसकी शुरुआत मीठे मीठे बाप दादा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को कई बार साकार में उस स्वरूप की धारणाएं मम्मा के द्वारा और स्वयं के द्वारा एग्जाम्पल भी हमको दिखाए। हम सभी जानते हैं कि टीचर के पश्चात क्लास में आना नहीं होता है, पहले विद्यार्थियों को क्लास में पहुंचना होता है, तत्पश्चात शिक्षक का आगमन होता है। और यदि हम शिक्षक के पहले क्लास में नहीं आए तो मैनर्स क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक बार की बात जो मेरे जहन में अब भी है और मैं अभी भी नजरों के आगे वह दृश्य तरोताजा देख रही भी हूं कि एक बार रात्रि क्लास में बाबा को क्या एक रमणीकता सूझी। पहले रात्रि क्लास में हमेशा ही मातेश्वरी जी मम्मा पहुंचती थी, अपनी संदली पर अपना स्थान ग्रहण करने के पश्चात मम्मा हम बच्चों से खुश खैराफत पूछती थी कि आप सभी कैसे बैठे हो, ठीक हो सभी। मम्मा का ये पूछना द्विअर्थी था, माना दो अर्थ निकलते थे उसमें कि शारीरिक रीति से सभी का स्वास्थ्य ठीक है, दूसरा फिर मम्मा का ये पूछना होता था कि सभी मन से अपनी स्थिति से सभी ठीक हैं, किसी को किसी से कोई फीलिंग आ गई, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, कड़वा बोल दिया, दुखदाई बोल बोल दिया, या किसी ने कोई ऐसा कर्म कर लिया जिसको कोई छोटी भूल या बड़ी भूल कही जाए, तो मम्मा पूछती थी कि सब ठीक ठाक है। तो जिनका नहीं होता था वो अपना हाथ उठाते थे, छिपने छिपाने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हम स्वयं जो सत्य है उसकी दरबार में बैठते थे, जो अंतर्यामी भी है, जानी जाननहार भी है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ है, सर्व बातों को सर्व ज्ञान को सृष्टि क्या लेकिन तीनों लोकों के आदि मध्य अंत को जानने वाले, उसके लिए शब्द है सर्वज्ञ। लेकिन गलत फहमी ये हुई कि अंतर्यामी, जानी जाननहार, सर्वज्ञ, इन शब्दों को गलत अर्थ में ले गए और उसे सर्वव्यापी कह दिया। तो मम्मा के पूछने के पश्चात मम्मा सबसे कचहरी कर लेती थी, गलती सुनाने वाले अपनी गलती सुना लेते थे और क्या करना चाहिए वह भी मम्मा उनको बता देती थी। फिर बाबा आते थे तो एक दिन बाबा ने रमणीकता सूझी बाबा को, तो बाबा ने क्या किया, मम्मा के क्लास में जाने के टाइम से पूर्व बाबा क्लास में पहुंच गए और बाबा जाके चुपचाप संदली पर बैठ गए। सभी बच्चे भी सोच में पड़ गए कि आज मम्मा नहीं आई और बाबा कैसे पहले आ गए। लेकिन बाबा का चेहरा बहुत ही हर्षित मुख था, मंद मंद बाबा जैसे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई इरादे से बाबा बैठे हो, और वो स्पेशली मम्मा का कोई अंदर में एक इरादा लेकर के बाबा बैठे थे। अब हम बच्चे सोच रहे थे कि क्या है, तो इतने में बाबा ने तो अपना थोड़ा एक दो महावाक्य उच्चारण किए ना किए। मम्मा अपने टाइम पर बहुत एक्यूरेट थी, जिन्होंने मम्मा की हिस्ट्री सुनी होगी। मम्मा किस समय कहां पर है ये पता करना, माना घड़ी में कितने बजे हैं, इतनी मम्मा एक्यूरेट थी। तो मम्मा ने देखा कि बाबा तो आके संदली पर बैठ गए हैं, तो मम्मा ने क्या किया, पांडव भवन में वहां ईशु दादी की जो ऑफिस है वहां क्लास होता था, बहुत छोटा सा हॉल और छोटे से हॉल में सभी बैठते थे। तो मम्मा पीछे से, जहां से मम्मा की एंट्री होती थी वहां से मम्मा नहीं आई, मम्मा पीछे के गेट से आकर के जहां सभी हम बैठे थे वहां आकर के ऐसे बैठने गई। अभी तो मम्मा पूरा बैठी नहीं बैठी और बाबा उठ के खड़े हो गए, और बाबा ने मम्मा को कहा कि अरे 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 मम्मा जान, आप वहां क्यों बैठते हो, आपका तो स्थान यहां पर है। मम्मा बोलती कम थी लेकिन मम्मा के चेहरे की रेखाएं, मम्मा के नयन, मम्मा की चलन बहुत बोलती थी। कोई भी देखे तो समझ सके कि मम्मा क्या कहना चाहती है। मम्मा जैसे लज्जित चेहरे से, जैसे कि क्लास में बाबा पहुंच गए और मम्मा नहीं पहुंची, तो जैसे उस भाव से मम्मा आंखें नीची करके और खड़ी हो गई। बाबा ने कहा नहीं मम्मा जान आप आइए। मम्मा वहीं खड़ी रही कि नहीं मैं यहां बैठूंगी क्योंकि मैं लेट आई हूं। परंतु बाबा ने बड़े आदर के साथ, आप सभी जानते हैं कि परमपिता परमात्मा जो कि निराकार है और निरहंकारी है, अहंकार नहीं, और फिर निर्माण है, तो ये जो तीनों ही प्रभु के जो श्रेष्ठ गुण हैं, ये तीनों ही गुणों का साक्षात्कार साकार में हम बच्चों ने देखे। तो यही गुण बाबा ने उस समय अपना दिखाया। इतना निर्माण होके, निरहंकारी होके और प्यार का सागर बन करके, क्योंकि बाबा ने जानबूझ करके वो किया था, तो मम्मा उससे जो अंदर में एक शोभ की भावना जो दिखा रही थी, तो बाबा जैसे अपनी जो ये एक इरादा था, उस इरादे को जैसे बाबा भी अपनी एक्टिविटी के द्वारा जैसे प्रकट कर रहा था। फिर तो मम्मा को बड़े आदर के साथ बाबा संदली पर बिठाया। अब ये जो प्रसंग हमने देखा, उस प्रसंग से क्या सीखा हमने, एक तो ये देखा कि इतना ऊंचे ते ऊंचा बाबा हमारा निराकार बाबा, इतना ऊंचे ते ऊंचा हमारे ब्रह्मा बाबा, दोनों ने अपनी निरहंकारिता दिखाई और निर्माणता दिखाई, प्लस बाबा ने कन्याओं को, माताओं को, बहनों को सदैव आगे किया और उनको वंदे मातरम किया, और उसमें भी यही जगत अम्बा है, यही जगत जननी है और यही शिव शक्ति है। यह मम्मा का परिचय भी स्वयं पिता परमात्मा ने शिव ने दिया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो उनका रिस्पेक्ट कितना रखना है, उनको कितना रिगार्ड देना है, स्वयं देकर के दिखाया। नहीं तो मम्मा भी शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की बेटी और पोत्री, लेकिन बाबा ने अपने से भी ऊंचा उनको सम्मान दिया और सम्मानित करते हुए और मम्मा को उनके स्थान पर बिठाया। तो हमने ये सीखा। फिर मम्मा का पिछले दरवाजे से आकर बैठना, ऐसे नहीं आगे आकर के बैठे, आगे जो बैठे हैं उनको डिस्टर्ब करे, नहीं, पिछले गेट से आकर के कोई को भी डिस्टर्ब ना करके मम्मा ने पीछे की रो में स्वयं को बिठाने के लिए अपना स्थान बनाने जा रही थी और बाबा ने उनको बैठने नहीं दिया। तो ये सीखा कि हमें क्लास के अंदर जब भी जाना है, पहुंचना है, हमें टीचर के पहले पहुंचना है, और यदि हम किसी कारण से लेट भी हो जाते हैं, रियल रीजन है कि हमारा पहुंचना भी नामुमकिन था, तो भी हमें किस प्रकार आकर के कहां स्थान ग्रहण करना है, ये हमने मम्मा से बाबा से सीखा। और निरहंकारिता कितनी बाबा की, कन्याएं, माताएं और बहनों के लिए तो ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है और गौरव की बात है। सभी बहनें जो भी बैठी हैं, कन्याएं, माताएं, सभी ध्यान से सुनो आप। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, हेवनली गॉड फादर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा खुद सृष्टि पर अवतरित हो करके सर्वप्रथम किसको वंदना की, हमने उनको वंदन किया, लेकिन उसने आकर के क्या किया, माताओं को वंदना की। और ये दृश्य प्रैक्टिकल में हमने देखा। बाबा जब, जो आज हिस्ट्री हॉल कहलाता है, पांडव भवन में बाबा आते थे, बाबा की जैसे ही खड़ाऊ चाकड़ी की हम आवाज सुनते थे तालबद्ध, तो हमें तुरंत समझ में आता था कि बाप दादा आ रहे हैं, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। और बाबा जैसे ही आते थे सभा में, तो माताओं की तरफ से बाबा खड़ा उतार के प्रवेश करते थे, माताओं के आगे आके खड़े हो जाते थे, और फिर माताओं को, हमने देखा बाबा को वंदे मातरम कहकर के बाबा का वहां खड़ा हो जाना। और माताएं गदगद, बस पता नहीं ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को हम क्या करें, कैसे प्यार दिखाएं, कैसे प्यार का इजहार करें। फिर आगे बढ़कर तो बाबा ने यहां तक बहनों को, माताओं को, कन्याओं को कहा कि तू नरक का द्वार नहीं है, लेकिन तू स्वर्ग का द्वार है। ये कितनी बड़ी खुशी की बात। अब ऐसी माताएं, कन्याएं और बाबा के बच्चे जो भक्ति मार्ग में ऐसे संस्कार लेकर के आए जो प्रभु को जब भक्ति करते करते याद करते थे तो उनका मन जो है, उनकी बुद्धि जो है, वो एकाग्रता से प्रभु को याद नहीं कर पाती थी। तो इसलिए संस्कार जो थे बड़े पावरफुल थे। अब उन संस्कारों का बाबा को परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि बिना एकाग्रता के वह बाबा को याद नहीं कर सकते। राजयोग जो बाबा ने सिखाया, तो ये राजयोग क्या है? ध्यान, प्रभु में ध्यान केंद्रित करने की एक विधि, प्रभु में ध्यान केंद्रित करने की अर्थात मन और बुद्धि को केंद्रित करने की कला। अब ये कला बाबा को हम बच्चों के अंदर भरनी थी, क्योंकि बाबा जानते थे कि बच्चों ने 63 जन्मों से लेकर के देह अभिमान के वशीभूत, विकारों के वशीभूत, बहुत ही छोटे बड़े विकर्म किए हैं, जिसके कारण पापों का बोझा चढ़ा है। और भक्ति में तो प्रभु का परिचय ही नहीं था, तो संबंध की तो बात ही दूर रही। भले मुख से कहा, लेकिन प्रैक्टिकल संबंध नहीं था तो एकाग्रता से याद कहां से करते। अब बाबा को हमारे अंदर एकाग्रता का संस्कार भरना था, स्वभाव बनाना था, तो वो बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया। पहले तो नॉलेज थी, एकाग्रता माना क्या? शाब्दिक अर्थ है एक को अग्रस्थान देना। इस शरीर के अंदर अग्रस्थान किसका है? नाक का। कभी भी किसी को मार्ग प्रदर्शना की जाती है तो गुजराती में ऐसे कहते हैं, सीधा नाक की दिशा में सीधे चले जाओ। किसी की भी इज्जत की बात आती है तो कहेंगे, हमारी नाक की लाज रखना, नाक कट ना जाए, माना बेइज्जती ना हो। जिसको हम बाबा के शब्दों में कहें तो डिससर्विस ना हो। तो अग्रभाग की ओर देखना अर्थात आगे की ओर देखना, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि जब बाबा को हम याद करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ बाबा की ओर होना चाहिए। साइड में बहुत सारी बातें जो हमको दिखाई पड़ती हैं, आप देखेंगे आंख भले इधर देखती है तो भी हमें पता चलता है कौन आता है, जाता है, बैठता है, उठता है, यहां का भी हमें दिखाई पड़ता है। तो हमें वहां नहीं देखना है, हमारा ध्यान सिर्फ अपने अग्रभाग में। तो हमारे आगे क्या है जिसको देखना है? तो बाबा ने कहा, तुम्हें अपने ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर के, और ज्योति बिंदु बाबा को ही देखना है, मन और बुद्धि उसका ध्यान तुम्हें वहीं केंद्रित करना है, केंद्र स्थान पर वही होना चाहिए। ये है एकाग्रता। और एक के ही याद में एक होकर के बैठना, मैं एक हूं, अकेली हूं, और यदि कोई मेरे साथ है, मेरे पास कोई है, मेरे समीप कोई है, सब कुछ जिससे मेरे सारे संबंध हैं, तो वो एक ही है, और वो है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब ये स्थिति हमारी योग में निर्माण होती है, तब कहेंगे हम एकाग्र चित्त हैं, यानी अंदर की वृत्ति हमारी, चित्त जो है हमारा, वो एकाग्र है। और जब हम एकाग्र हैं तो हमारी हर कर्मेंद्रिय को एकाग्रता से ही हर कर्म को करना है, जो बाबा हमें बहुत बार सिखाते हैं कि बच्चे जो भी सुनते हो तो सुनना क्या है, वहां भी स्वभाव संस्कार जो भक्ति के पड़े हैं, रस कर्ण को रस चाहिए, परंतु कौन सा रस उसको देना है। तो बाबा ने हमें कहा एकाग्रता से कर्ण रस लो, पर किन बातों का कर्ण रस लें। भक्ति में तो हम इधर की उधर की, जैसे बाबा कहते हैं झरमुई जंगमुई, पर चिंतन की बातें, ये ऐसा ये वैसा, ये करते ये वो करते, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो बातें हमारे कान में आती हैं, जो कान हमारे सुनते हैं, तो बाबा कहते प्रैक्टिस करो, कानों को भी एकाग्रता सिखाओ कि वह क्या सुने। तो पहले हमें अपने आप से दृढ़ निर्णय लेना है, दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बाबा और बाबा से संबंधित जितनी भी बातें हैं मुझे वही सुननी है। और विज्ञान भी, मनोविज्ञान भी कहता है कि आप वही सुनते हैं जो आप खुद सुनना चाहते हैं। जो हम खुद सुनना नहीं चाहते वो हम सुनते हुए नहीं सुनते हैं। हम तभी जैसे एब्सेंट माइंड की तरह काम करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने काम में इतने व्यस्त होते हो, कभी किसी से बात करने में, कभी कुछ काम करने में, कभी पढ़ने में, तो कोई आकर के हमें कुछ कह करके जाता भी है, हम देखते भी हैं कोई आया, उसने कुछ कहा और कह करके कुछ रख करके वो गया, फिर भी हमें नहीं पता कौन आया, क्या रख के गया और क्या कह करके गया। हमें पूछना पड़ता है कि कौन आकर के गया, क्या रख करके गया और क्या वो बोल करके गया। मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहां था, अपने लक्ष्य की ओर। तो बाबा ने भी हमें दो ही लक्ष्य पक्के कराए हैं, एक बाबा अलफ, दूसरा बे बादशाही। बाबा को याद करें और नई दुनिया को याद करें। तो मुझे सुननी भी कौन सी बातें हैं जो बाबा से संबंधित, पर पहले मैं निर्णय करूं कि मुझे यही सुनना है, तो मुझे वही सुनाई पड़ेगा। अब कान तो हम बंद नहीं कर सकते, अब पहले जो हमारे साथ रहे, हमारे मित्र बनकर हमारे साथ परचिंतन करते रहे और हम भी उन्हें परचिंतन में साथ देते रहे, हम भी परचिंतन करते रहे। अब जब हम निर्णय लेते हैं कि अब हम परचिंतन न करेंगे, न हम वो बातें सुनेंगे, तो स्वाभाविक है हमारे सामने परीक्षा निर्माण होगी, संकल्प हमारे चलेंगे कि अब मैं उनको कहूं कि मैं ये व्यर्थ बातें नहीं सुनती तो वो मुझे क्या कहेंगे कि आज तक तो सुनते आए, आज तक आप भी बोलते आए, करते आए और अभी नई धारणा शुरू की है, देखे कितना दिन ये धारणा चलती है। तो हमें अंदर में तैयार होना पड़ता है कि मैं बाबा के आगे दृढ़ संकल्प करूं और वो दृढ़ता मेरी मुझे विजयी बना के रहे, सफलता मुझे दिला के रहे, मैं उसमें पक्की रहूं। और जब मैं वो दृढ़ संकल्प लेती हूं और प्रैक्टिकल उस पर मेरा अटेंशन है, टेंशन है और मेहनत है, मेरी ईमानदारी है, वहां वफादारी है, बाबा से प्रतिज्ञा की है, मुझे उसको पालन करना ही है, ऐसा स्वयं भी स्वयं से प्रतिज्ञा जब करते हैं और उस प्रतिज्ञा को स्वयं के साथ भी निभाने के लिए वो तत्पर हैं, इसको कहते दृढ़ता। तो जब हम ऐसे दृढ़ मानस के साथ उस किसी की बातों को हम सुनते हैं, क्योंकि वो हमारे पुराने मित्र हैं, परचिंतन के साथी हैं, अब वो परचिंतन की बातें करेंगे जब तक वो परचिंतन त्याग ना शुरू करे। अब हम सुनेंगे लेकिन हमारे कान उनके लिए क्या होंगे, बंद रहेंगे, हम सुनते हुए नहीं सुनेंगे और हमारे अंदर एक ऐसी नैतिक हिम्मत रहेगी, एक ऐसी निर्भयता आएगी, निडरता आएगी और हमारा हृदय उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के साथ उनसे बातचीत करेंगे। तो जो ऐसी दृढ़ता के साथ और कर्मेंद्रियों को भी एकाग्र चित्त करके जो बाबा की याद में कर्म करते हैं, उनको सफलता अवश्य अवश्य और अवश्य प्राप्त होती है। दो चार बार उनको लगेगा ऐसे कि ये अभी कितने विचित्र बात बता रहे हैं, लेकिन दो चार बार हम उनको अवॉइड करते जाते अवॉइड करते जाते तो उनको फिर समझ में आ जाता है कि ये अब किसी भी प्रकार की परचिंतन की बातें नहीं सुनेंगे। उनको अंदर में आएगा कि हम भी इनके संग में ऐसे बने, हमें कहना नहीं पड़ेगा, ये है हमारी सक्सेस, हम जीत गए, विजयी बने, ये तो सक्सेस है ही, परंतु सिद्धि के रूप में सक्सेस कब है, जब वो व्यक्ति हमारे पास ऐसी बातें करने की हिम्मत न करे, वो सोच के आवे कि मैं इनको ये बताऊं, ऐसी बातें बताऊं, पर जब हमारे पास आवे तो बता न सके, बोल न सके। जैसे हमने साकार बाबा की जो स्थिति देखी थी, कर्मातीत स्थिति, हम बाबा के कमरे में, वैसे भी जब कर्मातीत बाबा नहीं भी थे तब भी हम जब बाबा के कमरे में बाबा से मिलने के लिए जाते थे, और आप लोगों को भी अनुभव होगा कि हम अव्यक्त बाप दादा के सामने आते हैं तो हमारे दिल में कितने अरमान होते हैं, हमारा रोम रोम पुलकित होता है उस मिलन के लिए, उनकी वो एक नजर पाने के लिए, उस नजर से निहाल होने के लिए। हम कितने एक्साइट होते हैं, कितनी जिज्ञासा होती है हमारे अंदर, और हम सोचते हैं हम बाबा को ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, परंतु होता क्या है, हम जब बाबा के सामने आते थे साकार में क्या, अभी अव्यक्त बाप दादा के सामने भी क्या, हम बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस हम अपनी उस ऐसी एक निराली न्यारी प्यारी स्थिति में खो जाते हैं। हम कहाँ हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, आजू बाजू कौन है, क्या है, कुछ ही याद नहीं रहता। बस एक ही धुन, एक ही लगन, मेरा टन आवे मैं बाबा के सामने आऊं, मैं बाबा की दृष्टि लूं, बाबा की नजर मेरे पर पड़े, मैं धन्य धन्य हो जाऊं। और हम जब बाबा के आगे जैसे जैसे आगे आते हैं, हम बाबा को देखते जाते हैं और हम इस दुनिया से जैसे गुम होते जाते हैं। और जब बाबा के सामने आ जाते हैं तो कोई नहीं दिखता, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मेरे नैन उनके नैन, मेरे नैनों में वो बसा हुआ और उनके नैनों में मैं देखना चाहती हूं स्वयं को, प्यार की चरम सीमा, मैं तेरी तू मेरा। हम खो जाते हैं, प्यार में डूब जाते हैं, बाबा के नैनों में वह जो प्यार का सागर छलक रहा है, हम उस प्यार में जैसे खो जाते हैं। और अंदर में एक ऐसा सुख भर जाता है, कभी हम उसको समा भी नहीं पाते हैं। हम कितनी देर तक आगे निकल जाते हैं, हमारे रोम रोम में वह प्रकंपन रहते हैं, कितना सुखद अनुभव होता है जो अतीन्द्रिय सुख कहलाता है। तो ये है एकाग्रता की सफलता, यह जो एकाग्र चित्त होकर, एकाग्रता के मन से, एकाग्र बुद्धि से, एकाग्र स्वभाव से, एकाग्रता का संस्कार लेकर के, और अपना ध्यान केवल केवल और केवल एक बाबा में, और हमें यह प्राप्ति होती है जो हमारे सुख का गायन शास्त्रों में वर्णित हुआ। भक्ति में हम शास्त्र पढ़ते थे और अभी हमें यह पता है कि ये जो शास्त्रों में वर्णन है वो मेरा है। तो एकाग्रता, जो गीता में भी कहा है, स्थित प्रज्ञ स्थिति है। एकाग्रता माना बैलेंस, लव और लॉ का बैलेंस, सेवा और याद का बैलेंस, कर्म करते न्यारे और प्यारे रहने का बैलेंस, स्नेही संबंधियों के बीच रहते हुए नष्टो मोहा बन करके कर्म करने का बैलेंस, जितना हम बैलेंस में रहते, जो तराजू दिखाते ना, तो तराजू में क्या दिखाते, दो पलड़े और बीच में जहां पकड़ते हैं वहां पर उनका कांटा रहता है, जो हमें बताता है कि हम कहां तक एकाग्र होकर के राइट रॉन्ग कर रहे हैं। तो ना ज्यादा इस तरफ वजन हो ना ज्यादा इस तरफ वजन हो। हम सभी ज्ञान में चलते हैं, कोई घर गृहस्थ में रहते हैं, कोई सेवा केंद्र पर रहते हैं, कोई मधुबन में रहते हैं, कोई आना जाना करके सेवा करते हैं, लेकिन बैलेंस न होने के कारण कहीं ना कहीं कोई न कोई हम डिससर्विस कर बैठते हैं। यदि हम अन्य की डिससर्विस नहीं करते, सबके बीच में कोई डिससर्विस नहीं करते, तो हम स्वयं की डिससर्विस कर देते हैं। स्वयं की डिससर्विस माना एकाग्रता टूटी, अवस्था फूटी, अवस्था हमारी चेंज हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती और फिर उस गलती को हम सोचते बैठते, व्यर्थ संकल्प चलते, गिल्टी में आते और बहुत कुछ अंदर उदासी, निराशा, गिल्टी, और फिर कभी कभी वो गिल्टी, व्यर्थ संकल्प इतने हद तक बढ़ जाते कि हम बाबा के गीत बजाते, उस एटमॉस्फेयर में आके भी बैठते, फिर भी हमारा योग नहीं लगता। योग न लगना क्या है? अंदर खुशी नहीं आती, हमें वो भूलता नहीं, हमारे विचार स्टॉप नहीं होते और हम बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करने में व्यस्त नहीं होते, लगन में मगन नहीं होते। सहज शब्दों में कहें तो आज योग में मजा नहीं आया, आज योग नहीं लगा, आज वो वाइब्रेशन नहीं था, थे अपने वाइब्रेशन नहीं, खुद वाइब्रेशन में नहीं थे, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए हम इस दोषारोपण अन्य के ऊपर करते हैं। तो अन्य को दोष देना एकाग्रता में नहीं होता। तो एकाग्रता के लक्षणों की लिस्ट तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। एकाग्रचित्त व्यक्ति दुख में सुख में न्यारी रहती है, सुख में वो बहुत अभिमान में नहीं आती, दुख में दुखी नहीं होती। मान अपमान, निंदा स्तुति, आशा निराशा सब में वो समान रहती है, गंभीर होती है, और इस गंभीरता की स्थिति क्या होती है? वो हर्षित मुख होती है, उसका चेहरा सदैव हर्षित मुख। हर्षित मुख का मतलब ये नहीं कि हमारी ये ऐसे हमारा हो या हम हंसे, नहीं, माना स्थिति अप डाउन नहीं होती, अवस्था ऊपर नीचे नहीं होती, कभी बहुत मूड में है, कभी मूड आउट है, कभी हम बहुत अच्छी तरह योग में बैठते, कभी बिल्कुल नहीं बैठते, कभी पढ़ाई बराबर रेगुलर फोर्सफुली करते, कभी हम मुरली पढ़ते नहीं पढ़ते, भूल जाते, कभी हम बहुत अच्छा बिहेवियर करते, कभी बिल्कुल नहीं करते। तो ये सब अप डाउन की जो स्थिति है वो एकाग्र चित्त वाले की नहीं होती, वो सक्सेसफुल होता है अपनी अवस्था में, उसकी अवस्था एक रस होती है, अचल होती है, अडोल बनती है। जैसे हमारी दादियों को हम देखते हैं, दादियों की तपस्या की जो हमें दिखाई पड़ता है असर, क्या आज दादियों को हम देखते हैं कितनी अथक होके, अचल होके, अडोल हो करके, और कितनी हम लोगों की सेवाएं करती हैं। आज हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं दादियों के, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, खास करके हमारी मिरेकल, मोस्ट मिरेकल, मोस्ट वैल्यूएबल हमारी जानकी दादी, हमारी गुलजार दादी और हमारी अन्य दादियां, जिनको देख के हम सिर्फ हैरानी हैरान होते रहते हैं। और हमारी वो आदर्श बनी है, हमें प्रेरणाएं उनसे प्राप्त होती हैं, उनकी शक्ति के बल से हम चल रहे हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। इसलिए अपनी प्रत्येक कर्मेंद्रियों को भी एकाग्रता हमें सिखानी है। देखे तो क्या देखे, सुने तो क्या सुने, बोले तो क्या बोले, उसको पाठ पक्का कराना है, उसको दृढ़ता देनी है और दृढ़ता के साथ उसको उस पर चलाना है। जब दृढ़ता के साथ कर्मेंद्रियों को हम चलाएंगे तब हमें कर्मेंद्रियों पर राज्य करने की सफलता प्राप्त होगी और तब ही हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, कहलाएंगे और ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को ये फल प्राप्त होगा कि वो भविष्य के राज्य अधिकारी का राज्य तिलक लगाएंगे और डबल लाइट के और माइट का क्राउन पहनकर और राज्य करेंगे। इसलिए बाबा हमें राजयोग सिखलाया, प्रजा योग नहीं, राजयोग, राजाओं का राजा बनाने वाला योग। स्व के ऊपर राज्य और भविष्य के भी हम राजे। तो ये मेडिटेशन एकाग्रता का फाउंडेशन है और सफलता का फाउंडेशन है एकाग्रता। इसलिए हम अच्छी तरह अपनी सूक्ष्म शक्तियों को उसमें चलाएं तो उसमें ऊर्जा जो हमारे अंदर मर्ज रूप में दबी हुई हमारी जो शक्तियां हैं वो ऊर्जा बन के बाहर आएंगी, अर्थात ज्वाला बन के बाहर निकलेंगी, जिस ज्वाला के अंदर हमारे विकर्मों का विनाश होगा। तो हम उस पिता परमात्मा से सारे संबंध जोड़कर उस एक का ही लक्ष्य रखते हुए याद करना है तो उस एक को, संबंध है मेरे सब तो उस एक के साथ, और मेरी कर्मेंद्रियों से हर कर्मेंद्रिय को जो भी कर्म करना है जो बाबा ने कहा जैसे बाबा ने सिखाया है मुझे वही उस एक के कहने अनुसार माना श्री मत पर ही मुझे करना है। तो ये है एकाग्रता और उसकी सफलता, सफलता सिद्धि के रूप में हम चाहे नहीं कहें नहीं पर हमें प्राप्त हो, सामने से आके हमें प्राप्त हो, स्वतः ही जिसकी हमने कल्पना भी न की हो और वो सक्सेस हमारे सामने आए जो हमने कभी सोची थी सामने आए। तो इसलिए अभी हम समय हुआ है, हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा को, विदेही बाप को विदेही बन करके 3 मिनट के लिए याद करेंगे और याद के साथ साथ हम उससे मन को एकाग्र करने की और सफलता को प्राप्त करने की अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा मन ही मन करेंगे और एक बाबा से सर्व संबंध से उसकी लगन में मगन हो जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। I would like to extend many, many thanks to Nalini Didi for being with us and sharing wonderful experiences with Sakar Baba, Mama and many other experiences. So one hand clap, please. Can we express